इशिका स्कॉट एंटरप्राइजेज में इंस्पेक्शन के लिए आई थी। उसने कंपनी के बारे में पहले ही पता कर लिया था। वो एक इंटरनेशनल कंपनी थी जो काफी अनएथिकल तरीके से काम करती थी। इशिका ने जब उनकी प्रोजेक्ट फाइल देखी तब उसने तुरंत उनकी गड़बड़ी को पकड़ लिया था। इशिका ने न सिर्फ इस प्रोजेक्ट को देने से मना किया, साथ ही उसने उनकी कंपनी पर लीगल एक्शन लेने की भी बात कही, जिसके बाद उनके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आहूजा काफी गुस्सा हो गए थे। इशिका के साथ आए दो इंस्पेक्शन ऑफिसर पहले ही उनके लिए काम करते थे। मिस्टर आहूजा इस तरह इशिका को जाने नहीं दे सकते थे। अगर उनकी कंपनी बंद हो जाती तो उन्हें बिलियंस का नुकसान होता, ऊपर से उसे जेल में भी रहना पड़ता। मिस्टर आहूजा ने किसी को कॉल करके इशिका को मारने के लिए कहा। वहीं उनकी बात सुनकर इशिका के साथ आए दो इंस्पेक्टर ऑफिसर मिस्टर जेम्स और मिस्टर भटनागर घबरा गए थे। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अब हमें चलना चाहिए, मिस्टर भटनागर ने बहाना बनाया। उन्होंने यही सोचा था कि वो बाहर निकलकर इशिका को अवेयर कर देंगे। मिस्टर आहूजा ने उनकी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखा और चिल्लाकर कहा, पागल समझते हो तुम दोनों मुझे? जब तक उस लड़की की लाश नहीं मिल जाती तुम दोनों मेरी नज़रों के सामने से हिलोगे भी नहीं। हमें आगे रिपोर्ट पेश करनी है मिस्टर आहूजा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारा शक हम पर जाएगा, जेम्स ने बहाना बनाया। मेरे माथे पर तुम्हें बेवकूफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तुम जो इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफर करने वाले हो वो मेल पर हो जाएगी। थोड़ी देर इंतजार भी किया जा सकता है, जल्दी ही उसकी मौत की खबर आ जाएगी। अगर तुम दोनों ने हिलने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि अगले दिन न्यूज़पेपर में ये खबर आए कि इंस्पेक्शन के लिए निकले तीनों रिसर्चर्स की डेड बॉडी मिली है, मिस्टर आहूजा ने उन्हें धमकाते हुए कहा। वो दोनों घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते मिस्टर आहूजा ने अपने गार्डों को इशारा किया। उन सबने उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ इशिका गाड़ी के अंदर थी। अभिमन्यु भी सिंघानिया मेंशन से निकल चुका था। वो इशिका को लेने जा रहा था इसलिए उसने इशिका को पहले कॉल किया। कहाँ हो तुम? देखो जहाँ हो वहीं पर ही रहना, मैं बस आ रहा हूँ। मुझे लगा सिंघानिया मेंशन में टाइम लगेगा लेकिन वहाँ सब गड़बड़ हो गई, अभिमन्यु ने इशिका का कॉल रिसीव करते ही कहा। मुझे भी लगा था कि मुझे टाइम लगेगा लेकिन यहाँ भी सब गड़बड़ ही है। डोंट वरी, मैं आ रही हूँ और मिलकर बात करते हैं, इशिका ने जवाब दिया। वो परेशान लग रही थी। इससे पहले कि इशिका कॉल कट करती अभिमन्यु जल्दी से बोला, अच्छा ठीक है, जो भी है कॉल मत कट करना, काफी लो साउंड कर रही हो, तुम्हें फिर से प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स होने लगे ना। आई विश ये नॉर्मल प्रेगनेंसी मूड स्विंग्स होते। लोग अपने फायदे के लिए इतना गिर जाते हैं कि देखकर अफसोस होता है। ये लोग अपने प्रोजेक्ट के चलते इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऊपर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाएगा, इशिका ने गुस्से में कहा। ये जो भी कंपनी है उसके बारे में मुझे बताना, हम देखते हैं कि आगे इस बारे में क्या किया जाएगा, फिलहाल तुम अपना मूड सही करो, अभिमन्यु ने इशिका को शांत करने की कोशिश की। इशिका कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई थी। अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने प्यार से पूछा, अच्छा बताओ तुमने डिनर किया? इन सबके बीच टाइम ही नहीं मिला, इशिका ने मायूसी से कहा। अब समझ आ रहा है तुम इतना गुस्सा क्यों हो। चलो मुझे अपनी लोकेशन बताओ, मैं आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट देखता हूँ, मैंने भी खाना नहीं खाया है, आज बाहर खाना खाते हैं, अभिमन्यु बोला। वो अपनी तरफ से इशिका का मूड सही करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी। वो GPS में लोकेशन देख रही थी कि तभी उसकी नज़र साइड मिरर पर पड़ी। उसने देखा कि कुछ हैवी व्हीकल रॉन्ग साइड में चल रहे थे। ये क्या हो रहा है, इशिका के मुंह से निकला। क्या हो रहा है, सब ठीक है ना, अभिमन्यु ने पूछा। हाँ सब ठीक है, लेकिन ये व्हीकल रॉन्ग साइड क्यों चल रहे हैं? इनके ऊपर काफी सारा सामान लोड किया गया है, अगर यही चलता रहा तो सभी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाएंगी, इशिका ने जवाब दिया। उसकी नज़र अभी भी उन गाड़ियों पर थी और वो काफी सावधानी से ड्राइव कर रही थी। इशिका के बताते ही अभिमन्यु घबरा गया था। उसने जल्दी से कहा, तुम लेन चेंज कर लो, तुम्हें ड्राइव करने की क्या जरूरत है, ड्राइवर को कॉल कर देती या मुझे बुला लेती, अभी अपनी गाड़ी किसी सेफ जगह पार्क करो, कहाँ हो मुझे बताओ, मैं आ रहा हूँ। पिछली बार इशिका की प्रेगनेंसी में जो भी हुआ था उसके बाद से अभिमन्यु वैसे ही काफी केयरफुल था। ऊपर से जिस तरह से इशिका ने वहां के हालात के बारे में बताया था उसके दिल में बुरे ख्याल आने लगे थे, उसका डर भी जायज था। ओवर रिएक्ट मत करो, मैं संभाल लूंगी, इशिका ने उसे समझाया। नहीं तुम अभी वहां से साइड हो जाओ, मुझे बहुत अजीब सी वाइब आ रही है, अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा। इशिका ने भी उससे बहस नहीं की और वो वहां से लेन बदलने लगी। तभी उसने देखा कि एक तेज गाड़ी चलकर आगे आई और उसे ओवरटेक कर लिया। वो उसे रास्ता बदलने नहीं दे रही थी। अब तो इशिका को भी गड़बड़ का एहसास होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ अभिमान आशिका के साथ था। एक तो उसने पूरे दिन से खाना नहीं खाया था, ऊपर से सिंघानिया मेंशन में जो भी हुआ उसकी वजह से उसका मूड उखड़ा हुआ था। वो आशिका के साथ काम करने के लिए आया था लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। अभिमान सब कुछ गड़बड़ किया जा रहा था। आशिका उस पर चिढ़ते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर राजवंश, पूरी फाइल करप्ट कर दी। वो मेरा ध्यान नहीं था, अभिमान ने हड़बड़ाकर कहा। अगर ध्यान नहीं है तो आपको किसी ने काम करने के लिए मजबूर नहीं किया है, घर चले जाइए, मैं देख लूंगी, आशिका ने काफी रूडली कहा।
मैं घर नहीं जा सकता, मैं तो आज रात यहीं पर रुकने वाला हूँ। मुझे भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ मिल सकता है? अभिमान ने आशिका की तरफ देखकर कहा। रियली? आशिका भौहें चढ़ाकर बोली, आपने तो सच में मेरे घर को गेस्ट हाउस समझ लिया है, जहाँ रहने और खाने को सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है ना, पैसे दे दूंगा। ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? कोई इंसान आपसे मदद मांगे तो उसकी हेल्प कर देनी चाहिए, अभिमान ने सिर हिलाकर कहा। आशिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो अभिमान की हरकतों से इरिटेट हो रही थी। आशिका किचन के अंदर गई, उसे भी ठीक से कुकिंग नहीं आती थी। उसने अपने लिए बाहर से जो खाना मंगाया था वही एक प्लेट में डालकर अभिमान के सामने लाकर रख दिया था। उस खाने को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बाहर से ऑर्डर किया हुआ था। अभिमान ने सिर हिलाकर सार्कास्टिकली कहा, तुम्हें कुकिंग भी नहीं आती, रहती भी बिल्कुल लड़कों की तरह हो। तुम एले से जरूर आई हो लेकिन इंडियन हो, क्या तुम्हारी फैमिली ने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आशिका ने जवाब दिया। फिर तो तुम बहुत लकी हो, यहाँ तो मैं सांस भी लेता हूँ तो उस पर भी मेरी फैमिली की नजर रहती है। अब तक मुझे कभी अपनी जिंदगी मेरे हिसाब से बिताने का मौका नहीं मिला, अभिमान ने कड़वाहट से कहा। आशिका ने उसकी बातें सुनकर गहरी सांस ली। ये पहली बार था जब वो दोनों एक दूसरे से अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत ही सही पर खुलकर बात कर रहे थे। अगर मैं इतनी ही लकी होती तो मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही इस तरह छुपकर रहने की। मिस्टर राजवंश, आपकी फैमिली जैसी भी हो लेकिन आप लकी हैं कि आप खुलकर सांस ले सकते हैं। आपको अपनी जान बचाने के लिए भागना नहीं पड़ता और ना ही जबरदस्ती किसी से शादी। बोलते हुए आशिका रुक गई थी जब उसे एहसास हुआ कि वो अनजाने में कुछ ज्यादा ही बोल रही थी।
वहीं शादी का जिक्र आते ही अभिमान के भी हाथ खाना खाते हुए रुक गए थे। उसने कहा, किसने कहा कि मुझे जबरदस्ती किसी से शादी नहीं करनी पड़ रही? जिस लड़की से मैंने उम्र भर नफरत की, बदकिस्मती से मुझे उसे उम्र भर के लिए झेलना पड़ेगा और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आशिका चुप हो गई थी। उसे डर था कि कहीं अनजाने में कुछ ऐसा ना बता दे जिसके बाद उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। वहीं उसके चुप हो जाने पर अभिमान बोला, हाँ जानता हूँ तुम आसानी से मुझ पर यकीन नहीं कर सकती, इसलिए कुछ नहीं बता रही। पर एक बात याद रखना, जो जैसा दिखता है वैसा कभी नहीं होता। मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत लड़का हूँ, जिसे जो चाहिए होता है वो सबसे पहले उससे दूर चला जाता है, फिर मेरे हिस्से में वो आता है जिससे मुझे नफरत है। फिलहाल के लिए आपको तसल्ली देने के लिए मैं यही कह सकती हूँ कि आप आज की रात यहाँ रुक सकते हैं। आशिका ने जवाब में इतना ही कहा और उठकर चली गई थी। अभिमान आशिका को जाते हुए देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, तो तुम्हें भी किसी से जबरदस्ती शादी करनी पड़ रही है। मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पाया पर कोशिश करूंगा कि तुम्हें बचा सकूं। न जाने क्यों तुम मुझे अपनी सी लगती हो। जहां पहले अभिमान को आशिका के घर पर काउच में सोने पर दिक्कत हो रही थी, तो आज वो खुद ही काउच पर जाकर लेट गया था। वहीं ईशिका अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि वो उन गाड़ियों से निकलकर एक सेफ लेन में जा सके। वो बिल्कुल शांत थी। कुछ भी कहकर ईशिका अभिमन्यु को परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो ईशिका, मुझे टेंशन हो रही है, वहां सब ठीक है ना? अभिमन्यु ने परेशान आवाज में कहा। वो काफी फास्ट ड्राइव कर रहा था। उसने ईशिका की लाइव लोकेशन निकालने के लिए पृथ्वी तक को मैसेज कर दिया था। इससे पहले कि ईशिका कोई जवाब दे पाती, वहां अचानक कुछ गाड़ियों के टकराने की तेज आवाज आने लगी। ईशिका प्लीज कुछ बोलो, वहां सब ठीक है ना? अभिमन्यु ने परेशान स्वर में कहा। ये तीसरी बार था जब ईशिका की जान पर बनाई थी और अभिमन्यु दूर रहकर कुछ नहीं कर पा रहा था। बार बार इस एहसास को जीना अभिमन्यु के लिए मुश्किल था। इससे पहले कि अभिमन्यु आगे कुछ पूछ पाता, उसे ईशिका के चिल्लाने की तेज आवाज आई। उसी के साथ अभिमन्यु ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए थे। उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया था।